हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह अनय के घर में, अनय अभी ठीक से सो भी नहीं पाया था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। नींद भरी आवाज़ में अनय ने आँखें मलते हुए पूछा, कौन है इतनी सुबह सुबह? अनय ने तेज़ आवाज़ में पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। वो कंबल हटाकर बिस्तर से उठा और दरवाज़े की ओर बढ़ा। कौन है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। इतना बोलते हुए अनय ने दरवाज़ा खोल दिया। अपना कमरा का दरवाज़ा खोलते ही अनय की नींद पूरी तरह गायब हो गई और आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा मनस्वी नाइट ड्रेस में, एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर उसके कमरे के सामने खड़ी है, और वो कोई साधारण हैंडबैग नहीं बल्कि बड़ा सा सूटकेस था। तुम यहाँ पर ऐसे इस हाल में क्या कर रही हो मनस्वी? पागल तो नहीं हो गई हो? आई एम सॉरी, तुम तो पहले से ही पागल हो, लेकिन ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अनय ने फिर से तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मनस्वी ने उसे धक्का देकर कमरे के अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, सबसे पहले तो आवाज़ कम करो, थोड़ा आराम से बोलो, और पागल मैं नहीं तुम हो, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, यहाँ आई हूँ तुम्हारे रूम में। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये सब क्या पागलपन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बैग, इतनी सुबह सुबह, इन सब बातों का क्या मतलब है? अनय ने भ्रम से पूछा और जम्हाई लेते हुए बिस्तर पर बैठ गया। समझ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि समझना नहीं चाहते। मैंने तुमसे बोला था कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे रूम में आकर रह लो, लेकिन तुम्हारा ये मेल ईगो, तुम तो आ नहीं सकते, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। जब तक मम्मी यहाँ है और तुम्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें हमारे रिश्ते का सच पता चले और उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आए। इतना बोलते हुए मनस्वी अपना बैग लेकर अलमारी के सामने पहुंची और अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। मम्मी को हार्ट अटैक? लेकिन कब, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? अनय ने हैरानी से कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तुम्हें बताकर भी क्या हो जाता, क्या फ़र्क पड़ने वाला था? हाँ, हॉस्पिटल ले गई थी मैं, तुम्हारी इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ, डॉक्टर्स पहले से ही थे, और उस वक्त तुम आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, मनस्वी ने लापरवाही से कहा और अपना सूटकेस खोलकर उसके कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगी। उसकी बातें सुनकर अनय ने गहरी सांस भरी और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, शायद इसीलिए मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती तुम। खैर, कोई बात नहीं, अब तक तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। मनस्वी ने अनय की बात सुनी लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उसने कुछ न सुना हो। अनय उदास लग रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर मनस्वी को भी उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया और चुपचाप अपने कपड़े अलमारी में सेट करने लगी। तभी उसे पीछे कुछ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ पर अनय का हाथ था। वो उसके हाथ में पकड़ा हुआ अपना कपड़ा लेने लगा और बोला, मनस्वी, किसी भी चीज़ की तमीज़ है तुम्हें? ये इस तरह से कैसे रख रही हो कपड़े? मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। एक काम करो, तुम एक साइड पर रख लो और मेरे कपड़े दूसरे साइड पर, इस तरह से बीच बीच में मत रखो। मनस्वी के ठीक पीछे खड़े होकर अनय ने ये बात बोली तो मनस्वी को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन और कान पर महसूस हुईं। वो कुछ पल के लिए जम गई। जैसे ही उसे सब कुछ समझ आया, उसने अनय के हाथ के नीचे से अपना हाथ झटके से निकाल लिया और अनय का हाथ साइड में करते हुए बोली, क्या नहीं आता मुझे, इतना ठीक से तो रख रही हूँ, और मेरे कपड़ों में कांटे नहीं लगे हुए हैं जो बीच में रखने की वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसके इस बर्ताव को देखकर अनय ने भी अपना हाथ वापस ले लिया और उससे दूर हट गया। मनस्वी ने उसी तरह बाकी के कपड़े रखना जारी रखा। अनय ने बेबसी से सिर हिलाते हुए बोला, तुमसे तो कुछ भी बोलना या बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर वो सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। मनस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड चला गया, नहीं तो अभी और कोई लेक्चर भी सुना देता। मनस्वी को आज पहली बार अनय के बोलने से ज्यादा उसके इतने करीब होने और उसके स्पर्श से कुछ महसूस हुआ, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो इस बारे में नहीं सोची। आदित्य के विला में, स्टडी रूम में, आदित्य आज ऑफिस नहीं गया था। उसने रवि को घर बुला लिया था और वहाँ से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। जैसे ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया, बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगे। उसने रवि से फ़ोन उठाकर चेक करने को कहा, रवि, देखो किसके मैसेजेस हैं और अगर कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो बताना, नहीं तो तुम ही रिप्लाई कर दो। ओके सर, एक मिनट में चेक करता हूँ। इतना बोलते हुए रवि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल आदित्य के सामने वाली स्टडी टेबल पर रखी और मोबाइल फोन की ओर बढ़ गया। सुनैना उन दोनों के लिए कॉफी लेकर वहाँ आई। आदित्य ने उसे कॉफी टेबल पर रखने को कहा। सुनैना कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गई। आदि, आई थिंक तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए। इतना काम क्यों कर रहे हो तुम? वैसे चलो, हमें साथ में हॉस्पिटल भी जाना है डॉक्टर से तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए। सुनैना आदित्य को काम में लगा हुआ देखकर उसकी फिक्र करते हुए बोली, आज किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं है और ट्रीटमेंट मेडिसिन तो मैं ले रहा हूँ ना टाइम पर, तो फिर और अगर मन करेगा तो रेस्ट भी कर लूँगा, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे अब ये सब तुम्हारा काम है, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से ही मुझे करना पड़ रहा है। आदित्य का ध्यान भले ही काम पर था, लेकिन उसने सुनैना की सारी बातें सुनी और एक एक कर उनका जवाब दिया। मेरा काम? मेरा कौन सा काम है? क्या बोल रहे हो आदि, तुम मुझे तो ये सब आता भी नहीं है, सुनैना थोड़ा घबराते हुए बोली। तभी आदित्य थोड़ी मस्ती में बोला, नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, सिखा दूंगा। मेरा मतलब है, मैं, रवि और बाकी सारे लोग हैं ना ऑफिस में, मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगी। अरे लेकिन फिर भी अभी तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल ईयर अभी बाकी है और उससे पहले ही कैसे ये सब? सुनैना फिर से घबरा कर बोली, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता। आप कंपनी की ओनर हो तो जाकर चुपचाप अपनी कुर्सी और अपना काम संभालो। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुमने क्या कहा, मुझे ना रेस्ट। हाँ, मुझे ज्यादातर तो अब रेस्ट ही करना है, बहुत थक गया हूँ यार मैं। आदित्य एक हाथ में डॉक्यूमेंट पकड़कर अंगड़ाई लेते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुनैना बोली, मुझे नहीं बनना कोई ओनर, तुम सब कुछ वापस अपने नाम करवा लो, और वैसे भी वो सब तुम्हारा स्टूपिड प्लान था, मुझे ये सब कुछ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए आदि, और मुझे तो वैसे भी कभी नहीं चाहिए थी, बस बाकी सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं डैड की कंपनी चला रहा था, क्योंकि मुझे पता है कितने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है अब ये एकदम सही हाथों में है और तुम बिल्कुल इसके लायक हो सुनैना, आदित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। सुनैना सोच में पड़ गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे ऐसे किसी काम का कोई अनुभव नहीं था, सब कुछ उसके नाम भले ही हो गया हो लेकिन अब तक उसे काम का कुछ भी पता नहीं था। सर, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसमें आप दोनों में से किसी एक को तो होना ही चाहिए, इसलिए हमें अभी निकलना होगा, रवि वहाँ आते हुए बोला। सुनैना ने अपना हाथ वापस ले लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। रवि अपनी हंसी दबाने लगा। आदित्य ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया।
ये कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? मैंने तुमसे सब कुछ एक हफ्ते के लिए कैंसिल करने को कहा था ना, तो फिर ये कैंसिल क्यों नहीं किया तुमने? आदित्य ने रवि से पूछा। सर, वो मैंने उन्हें मेल कर दिया था कि आप एक हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अगर आज किसी भी वक्त आप फ्री हैं तो उस वक्त मीटिंग रख सकते हैं, क्योंकि बाद में उन लोगों को टाइम नहीं है, रवि ने अपनी परेशानी बताई। कौन लोग हैं? जो भी हो बोल दो कि मुझे आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में मीटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी और ये मीटिंग तो वैसे भी मुझे कभी पसंद नहीं रहती, आदित्य ने दोनों हाथों से अपना सिर रगड़ते हुए कहा। सुनैना उसकी फिक्र करते हुए बोली, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है क्या? तबीयत तो ठीक नहीं लग रहा, कहीं दर्द तो नहीं है ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं तो पहले ही बोल रही थी लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो आदि। अरे 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 बस करो यार, इतनी तो तबीयत भी नहीं खराब है जितनी तुम टेंशन ले रही हो, मैं तो बस वो मीटिंग करने से हमेशा इस तरह के बहाने बनाकर बचता रहता हूँ, इसलिए। एक मिनट, तुम तो आज फ्री हो, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ इस मीटिंग में, कहीं से तो शुरुआत होगी और तुम्हें समझ में आएगा आखिर तुम्हें क्या करना है, आदित्य ने सुनैना की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सुनैना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और एक दो कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं आदि प्लीज, ये बहुत ही बेकार आइडिया है, मैं कोई भी मीटिंग अटेंड करने वाली और मैं वहाँ पर करूँगी क्या? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है अपनी कंपनी, शेयर्स और, तो फिर ऐसे कैसे मैं, और मुझे ये भी नहीं पता है कौन लोग हैं, वो किन से मीटिंग करनी है। उसे इस तरह पीछे हटते हुए देखकर आदित्य भी उठकर उसकी ओर बढ़ा और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर समझाते हुए बोला, अरे तुम इस तरह क्यों पैनिक कर रही हो? क्या तुम्हें भी मेरी तरह सोशल एंजाइटी है? तुम तो अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हो पब्लिक में और बाकी लोगों के साथ भी। मैंने देखा है कॉलेज में भी कितने सारे फ्रेंड हैं तुम्हारे, और उस दिन मीडिया के सामने भी तुम नॉर्मल थी। लेकिन मैं वो इंटरव्यू कम्प्लीट नहीं कर पाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, सुनैना में उसे याद दिलाते हुए कहा क्रमशः।